वसुंधरा पर दिव्य रूप में वसुंधरा लगन बदले हमें सफर क्या करना है बन के सफर अब अपने घर चलना है कभी लगन बदले कभी लगन बदले हमें सफर क्या करना है बन के सफर अब अपने घर चलना
ओम शांति जी
क्या बोला आज
सच्ची स्वतंत्र का बाप बुलाने आए हैं
परतंत्रता ठीक है
परतंत्र के बुलाने आए
संसार के लोग परतंत्रता में यहाँ पर क्या है अपरंपार दुख भवन का आज तो सच्ची स्वतंत्रता अर्थात सच्ची स्वतंत्रता अर्थात
संपूर्ण
सर्व बंधनों से मुक्त और बंधन सारे नहीं हो मैं और मेरापन के बंधन से मुक्त ये संडे की मुरली है उसमें बहुत अच्छी एक बात बाबा ने कहा कौन सी मैना बनना चाहते हो पिंजड़े की मैना बनना चाहते हो या स्वर्ग की मैना बनना चाहते हो तो मैं तो सच्ची स्वतंत्रता अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त मैं मेरा सर्व बंधन सच्ची स्वतंत्रता अर्थात विकारों से मुक्त
निर्विकारी
संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण पवित्रता प्यूरिटी फ्रीडम फ्रीडम अर्थात प्यूरिटी
आप सब ठंडे हो जाओगे
और स्वतंत्रता अर्थात व्यर्थ संकल्पों से मुक्त
न्यारे प्यारे
निर्विघ्न
निर्विघ्न विघ्न का अंश भी नहीं और विघ्न का वंश भी नहीं जहाँ अंश नहीं जहाँ वंश नहीं वही विघ्न विनाशक है अंश भी नहीं और वंश भी नहीं है वही निर्विघ्न विनाशक है तो संपूर्ण स्वतंत्रता अर्थात संपूर्ण निर्विघ्न व्यर्थ से मुक्त विकल्पों से मुक्त बंधनों से मुक्त विकारों से मुक्त और पुराने संस्कार और स्वभाव से मुक्त बाबा ने कहा है मुरली में पुराने स्वभाव और संस्कार के बारे में ऐसा सोचो कि ये मेरी वस्तु नहीं है किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि ये जैसे मेरी है ही नहीं ये शूद्र बने की है मेरी नहीं तुम्हारा तो नया जन्म हुआ है पुनर्जन्म हुआ अब तुम द्विज हो द्विज नया जन्म ब्राह्मण तो यह है संपूर्ण स्वतंत्रता यह है सच्ची स्वतंत्रता संसार रावण राज्य में रावण के पिंजड़े में रावण के जेल में है आज का तो बाप आए हैं स्वतंत्रता लाने तुम स्वतंत्र कब थे आज में सतयुग में थे और कहां थे परम धाम में भी स्वतंत्र है आत्मा संपूर्ण स्वतंत्र सूक्ष्म फरिश्ता भी
स्वतंत्र बोला है
फरिश्ता तो स्वतंत्र है ही तो फरिश्ता तुम अभी स्वतंत्र बन रहे हो संगम युक्त
अच्छा
अभी तक तो ज्ञान ही संपूर्ण नहीं होना बोला भगत हो
तुम तो अभी तक भक्त ही हो कल क्या बोला बाबा ने तुम अभी भक्त ही हो ज्ञानी अगर होते तो पूर्ण ज्ञानी को पढ़ने की दरकार नहीं जब तुम पूर्ण ज्ञानी बन जाओगे तो तुम यहाँ रहोगे नहीं तुम्हारी अभी भी भक्ति ही चालू है इसका मतलब
बड़े ज्ञानी
भक्ति अर्थात जहाँ जहाँ देह भान है वो सब कुछ भक्ति ब्राह्मण भी भक्ति करते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण कौन सी भक्ति करते हैं बाबा बारिश रुक जाए तो पहुंच जाए उधर और क्या भक्ति करते हैं ब्राह्मण भक्ति करते हैं ना बाबा से ये दे दो पैसे दे दो धन दे दो माता है बाबा से कहती है हम गरीब है
धन दे दो
वो भी भक्ति है तुम्हारा काम है मास्टर सर्वशक्तिमान के समान से विश्व को सकाई देना देना ये भक्ति नहीं है, बस जो कुछ लेना है वो सब भक्ति है, मांग कर लेना, अधिकारी बनकर लेना वो नहीं, मांग कर लेना वो सब कुछ भक्ति है। तो कल तो बाबा ने कहा तुम सब भक्त हो, भक्ति नहीं करते पर देहभान से जो कुछ किया जाता है वो सब
भक्ति है,
तो भक्ति हो गया। आज भी भक्ति भक्तों के लिए कुछ कहा है बाबा ने,
कोई भूल करते हैं तो भी भक्ति है, क्योंकि
संपूर्ण ज्ञानी जो है वो कभी भूल नहीं करते,
साधना या तो आराधना,
साधना आराधना याद फरियाद। और भक्तों के लिए क्या कहा आज, आज की मूल्य डिस्कस करेंगे बस।
वेरी गुड,
भक्त जो पुराने भक्त, जो भक्त नहीं है वो,
हाँ, वो नहीं आएंगे, वो सुनेंगे नहीं, ठीक,
वो सुनेंगे नहीं, वो टिकेंगे
नहीं,
पहले बोला वो अटेंशन नहीं देंगे, अलग अलग जगह पर
समझेंगे,
वो समझेंगे नहीं, पहले तो बोले
समझेंगे तो आगे दूसरी।
और ऐसा से बाबा ने कहा बात करने की दिल नहीं होती
बाबा ने, डायरेक्ट नए नए से बाबा बात नहीं करते, क्योंकि ये नई नॉलेज है, क्योंकि उल्टे से उल्टे प्रश्न पूछते थे बाबा ने कहा ना, वो उल्टे उल्टे प्रश्न पूछते हैं, इसके लिए बाप उनसे बात नहीं करते। बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा हमारे गांव में चलो, तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा हमारे गांव में चलो, तो बाप कहते हैं
तुम
कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो। साकार वाणी है, कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो। बाप उल्टे सीधे प्रश्न पूछते, क्योंकि ये नया ज्ञान है, इसके लिए नयों से बाबा नहीं मिलते। तो जो जिन्होंने भक्ति पूरी नहीं की है, जो पूरे पुराने भक्त नहीं है, वो ये ज्ञान को समझेंगे नहीं, वो यहाँ ठहरेंगे नहीं, और कहीं और एक जगह बोला उनको अटेंशन से सुनेंगे नहीं, अलग अलग जगह। और क्या बोला आज, जमघटों की सजा, सौ गुना दंड, धर्मराज के दंडे, अलग अलग शब्द बाबा यूज करते हैं, पद भ्रष्ट याद नहीं करेंगे तो बाबा पूछते कितना घंटा याद करते हो, तो बच्चे क्या कहते हैं,
छह घंटा,
नहीं नहीं आज की मुरली में, आज की मुरली
नहीं, आज की मुरली में था एक घंटा,
एक घंटा,
और बोला
तो बाबा कहते हैं अरे जब तक निरंतर याद नहीं करोगे तो पाप
भस्म
करेंगे,
एक
घंटा बोला। बाबा कहते हैं चार्ट दे रखो,
नहीं जो चार्ट बच्चे देते हैं,
हाँ,
उसको देखते तो बाबा देखते समझ जाते
हैं।
कोई निरंतर याद करने वाले भी है, वो बीच में वो चला था ना गुड विशेष का बैंक, उसमें ऐसे ऐसे फॉर्म आए थे कि कई लोग लिख रहे हम 24 घंटा शुभ भावना देते हैं, कई उन्हें तेरा 20 घंटा हम देते हैं रोज,
चार घंटा चाहिए,
ऐसे अलग 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 किया, कौन सा 7 मिलियन।
ये क्या है, तो बाहर के हिसाब से एक वर्ड,
ये तो खुद को खुद जज करना है, खुद की जज खुद करना है, दूसरों को बताने से क्या,
जब याद में बैठते तो बुद्धि
बनाने के लिए फूलों का गुलदस्ता ले।
और क्या बोला आज,
आज नॉलेज सोर्स ऑफ
इनकम है।
और बोला कि बच्चे और बाप में क्या अंतर है, बाप कहेंगे मीठे बच्चे, लेकिन बच्चे कहेंगे भाई भाई कहेंगे,
भाई भाई कहेंगे,
वो ये नहीं कहते कहेंगे।
बाबा को आदत पड़ी हुई है, बाबा ने मुरली चली थी, बाबा को एक आदत पड़ी है बच्चे बच्चे कहने की, बाबा जब कहते हैं तो बाप बड़ा है, थोड़ा डर भी रहता है, उसके शब्द भी कड़े होते हैं, थोड़ा असर भी होता है, कड़े तीर लगते हैं, थोड़ा असर भी होता है, भाई कहने से इतना नहीं होगा, तो बड़े कहता है तो मानेंगे, ये भी एक पॉइंट बोली आज। और क्या बोला आज, छोटी 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 बहुत सारी पॉइंट्स है। और
जैसे आ गया
तुम्हारे पास क्या था, सचिव में बहुत धन था, बाद में कम हो गया,
एक मंदिर से
कितना धन लूट के ले गए,
तो आज भी याद किया,
तो आज कल परसों भी याद किया था शायद,
कल भी याद किया,
मोहम्मद
गजनवी भी याद किया,
बाबा को बहुत प्यार है मोहम्मद गजनवी से, क्यों
उधर चिमन मंदिर,
उनको अगर पता होता है
क्योंकि सबसे पहले किसका मंदिर लूटा,
चिमन भाई इधर
उसी का लूटा ना बाबा, ये भी कहते हैं सबसे पहले तो मेरा ही मंदिर लूटा।
दो तीन दिन
कंटिन्यू याद किया मोहम्मद गजनवी का, सबसे पहला एक विध्वंसकारी आक्रांत है भारत पर 10वीं शताब्दी में। उसके पहले तो सिकंदर आके गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में, जबकि चाणक्य और गुरुकुल की सत्ता ने उसको बाहर निकाला चंद्रगुप्त मौर्य जब। ये तो बात की बात है कि जब पृथ्वीराज चौहान का समय से थोड़ा पहले 200 साल पहले तब उसका आक्रमण हुआ भारत में। पर उसका ये था, वो तो एक युवक था, 20 साल का युवक, उसने संकल्प किया था कि संपूर्ण भारत में जितने मंदिर है उसको सबको विध्वंस कर दूंगा, जितने भारत है उसमें हिंदू धर्म को समाप्त कर दूंगा और भारत में इस्लाम की स्थापना करनी, ये उसने शपथ ले रखी थी मोहम्मद गजनवी। इसलिए मोहम्मद गजनवी के भारत में 17 बार अटैक हुए अलग अलग जगह पर, 16वां जो अटैक है वो है सोमनाथ पर। पहला एक इधर इधर उधर 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 हर जगह से उतने, पर सबसे ज्यादा उसको जो लूट मिली वो सोमनाथ से मिली।
कोई बोलते उसी को 17 बार
नहीं,
सबसे पहला अटैक उसका पेशावर, पेशावर राजा जयमल वहां पे, फिर उसके बाद सेकेंड अटैक, दो अटैक कश्मीर पर है, दो अटैक मुल्तान पर है और कहीं कई जगह पर अटैक है। उसके तीन चार बीच के जो आक्रमण है वो पता नहीं उसके बारे में, 12वां 13वां 14वां 15वां वो कहाँ था उसका कोई वर्णन नहीं है इतिहास में। 16वां अटैक जो है 1024 दैट इज इन सोमनाथ, सोमनाथ का जो उसका ये था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर का कई लोगों ने उसको लूटा है, केवल एक मोहम्मद गजनवी ने लूटा और लूटा और फिर कई लोगों ने उसको उसका जीर्णोद्धार किया, उसका पुनर्निर्माण किया। उसके बाद औरंगजेब ने भी लूटा, बाद में जब नादिर शाह आया तो उसने भी लूटा था। ये जितने आक्रांत आते गए सब ने उसको लूटा है और कुछ कुछ अच्छे लोगों ने फिर उसका जीर्णोद्धार किया, जैसे राजा भीमदेव जो डेलवाड़ा टेम्पल जिसने किया, उसने भी उसका किया 10वीं शताब्दी गुजरात का, तो उसने भी उसका जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर उसने भी किया था, लास्ट जो किया है 1954 वो सरदार पटेल अभी जो लास्ट
बनाया विक्रमादित्य
नहीं उसकी भी बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारी कथा,
लेकिन हमने तो यही बताया
जाता है इतिहास इसको सपोर्ट नहीं करता। बाबा कहते हैं वो विक्रमादित्य ने बनाया, पर इतिहास का वर्णन कुछ और है। इतिहास में तो
बनाया होगा बाद में,
इतिहास के वर्णन के अनुसार उसको तो सोम ने बनाया, मतलब चंद्रमा ने बनाया। इतिहास का वर्णन कुछ और है, ऐतिहासिक कथाएं कुछ और है। इतिहास में कहीं पर भी विक्रमादित्य के चरित्र में वर्णन नहीं है कि उसने, क्योंकि सोमनाथ तो उसके कई साल पहले से चालू है, वो उसके जीवन काल में बना नहीं है। पर मतलब मुरलियों में भी कहीं आया है वैसे मुझे पता नहीं, शुरुआत में पर विक्रमादित्य ने बनाया ये कहाँ आया है ये अभी तक, तो क्योंकि विक्रमादित्य भी
भक्ति का
मुरली के प्रदर्शनी के चित्र है 84
उसमें होगा,
उसमें भी है ना
बाबा के महावाक्य में अभी तक कहीं आया है क्या? वो तो जो शास्त्र में कहानी है कुछ और कहानी है, वो तो दक्ष प्रजापति की कहानी है, उसकी कितनी 26 कन्याएं होती, 26 का विवाह चंद्रमा के साथ होता है, पर चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से होता है, बाकी को वो इतना प्यार नहीं करता है। फिर वो सब उसके पास जाती है, अपने पिताजी के पास, बोलती है कि ये हमको पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा है, तो उसको समझाता है पर नहीं समझता है, तो उसको शाप देता है दक्ष प्रजापति कि वो क्षीण हो जाएगा उसका पूरा शरीर, पर वो शिव की भक्ति करता है, शिव की भक्ति करता है, शिव प्रसन्न होते हैं, शिव उसको अपने ललाट पर धारण करता है शिव। उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाती है और जिस स्थान पर ये करता है उसी स्थान पर चंद्रमा फिर एक मंदिर बनाता है, सोम है ना चंद्र, उसी का नाम फिर सोमनाथ हुआ। ऐसी शास्त्रों की कहानी है। एक दूसरी कहानी के अनुसार वो कृष्ण ने भी बनाया हुआ है, मतलब बाद में कृष्ण ने भी उसका कुछ, हाँ कृष्ण की मृत्यु भी वहां हुई है, ये भी कहानी जगह है कृष्ण मंदिर, तो वहाँ जब कृष्ण बैठा था तो उसका जो अंगूठा था लाल लाल, शिकारी ने देखा ना तो शिकारी ने मारा नीचे
साइड में,
तो वहाँ पर उसका महत्व और बढ़ जाता है। और जितने ज्योतिर्लिंग है उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, बाकी 11 बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में, तो इस स्थान का महत्व क्योंकि वो स्वयं शिव ने स्थापन किया हुआ है, शिवरात्रि भी वहीं से मनाई जा रही है, ये सारी कहानियां हैं उसके साथ जुड़ी हुई। तो शास्त्रों के अनुसार तो ये है, पर अभी विक्रमादित्य का नाम, अभी विक्रमादित्य भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि विक्रमादित्य नाम कई लोगों ने, कई राजाओं ने अपने नाम विक्रमादित्य रखे है, विक्रमादित्य चार, विक्रमादित्य दो, पर मेन जो विक्रमादित्य जो बाबा के लिए कहते हैं वो है उज्जैन, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य वो मेन है, वो क्राइस्ट से क्योंकि इसकी ख्याति तो बहुत ज्यादा थी विक्रमादित्य। तो ये जो सोमनाथ था, जब मोहम्मद गजनवी अपनी पूरी सेना लेकर आया तो उस समय मंदिर में कम से कम 50,000 लोग थे प्रार्थना करते हुए, 50,000 इतना बड़ा मंदिर था। अभी जो है वो पहले नहीं था, क्योंकि कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया, कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया। तो उस समय तो उसने 50,000 के 50,000 लोगों को मार दिया, जितने थे सब के सब को मार दिया, किसी को भागने नहीं दिया।
किसने?
मोहम्मद गजनवी, क्योंकि गजनवी की स्टाइल ही ऐसी थी कि जो गांव लूट ले जाएगा वो उसका ऐलान ही ऐसा करता था कि पूरे गांव के गांव जला देगा पहले, ताकि पता चले आगे वालों के कि मैं आ रहा हूँ, डर। पर वो इस्लाम, मतलब उसकी उसका ये था कि मुझे इस्लाम की स्थापना करनी है बस। कश्मीर पे भी उसने दो बार हमला किया, पेशावर पर दो बार हमला किए, मुल्तान पर हमला किया, और उसका जो भी है वो फरेब और भारतीयों का कैसा, सुबह से शाम तक लड़ेंगे, रात में नहीं लड़ेंगे, ये नियम रहते थे राजपूतों के इनके, पर वो रात में हमला करेगा, कभी कभी कुछ करेगा, अलग अलग षड्यंत्रों के साथ हमला करता था, झूठ ये सब करके वो किया था। तो जब वो सोमनाथ का हमला, उसका 16वां बार है, और सोमनाथ का हमला करके वो जब जा रहा था तो हरियाणा के पास जाटों ने उसको लूटा, बहुत सारा उसका जो भी माल था लूट गया। उसका फिर आखिरी हमला था 17वां बार, वो जाटों के ऊपर, उसके बाद में वो भारत नहीं आया। उसकी उम्र भी कितनी थी, 20 साल की उम्र में उसने सब चालू किया, 36 में तो जब 36 साल का था उसकी डेथ हो गई, इतनी कम उम्र थी, उसने ये सब कर दिया।
16 साल में
उसने संकल्प किया था कि भारत पर हर साल एक आक्रमण करूंगा, ये उसका संकल्प था। वो जाने के बाद में 200 साल के बाद मोहम्मद घोरी आया भारत में, मोहम्मद घोरी जब आया भारत में उसने भी यही सब किया जो कि मोहम्मद गजनवी ने किया था, उसने भी लूटपाट सब जगह चालू कर दी। परंतु मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका जो युद्ध हुआ वो सबसे भयंकर युद्ध है, ऐसा ऐसी उसके साथ युद्ध और किसी ने किया नहीं। अगर पृथ्वीराज चौहान नहीं होता तो सीधा मतलब उसने भी संकल्प किया था संपूर्ण हिंदुत्व को नष्ट करने का, हिंदू धर्म को ही नष्ट करने का उसका संकल्प था मोहम्मद घोरी का। वो घोर से आया था, गजनवी से आया था। तो पर पृथ्वीराज चौहान का अंत अर्थात एक शासन का अंत, एक साम्राज्य का अंत था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का अंतिम शासक है हिंदू, वो जाते ही इस्लाम भारत में आ गया पूरा। वो जाते ही मोहम्मद गजनवी तो चला गया, पर उसने उसकी सेवक था उसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक उसको छोड़ के गया दिल्ली में, उसी ने फिर वो कुतुब मीनार बनाया। फिर उसके बाद में अलग अलग वंश आते गए, लोधी वंश आया, अलग अलग शासन आते गए, उसके बाद में बाबर आ गया, बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में अकबर के बाद में सारा वो इस्लाम शासन चालू हो गया भारत। कुछ चालू हुआ सबसे पहले सिकंदर से भारत पर आक्रमण, उसके बाद में मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, फिर नादिर शाह, फिर ये सारे मुस्लिम शासक, और फिर ये होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, फिर बीच में फ्रांसीसी आ गए, फिर बीच में पुर्तगाली आ गए, इन्होंने भी भारत को लूट के लेके गए, डच भी आ गए भारत में, एक एक करके आते गए। वहां से चालू हुआ 1947 तक, उसके बाद में आज 68 साल हो गए भारत स्वतंत्र हुआ। हाँ, अभी एक प्रश्न है, क्या ये जो शासक आए लॉर्ड क्लाइव कितना कुछ लूट के लेके गया प्लासी के युद्ध के बाद, 1757 की जो लड़ाई थी प्लासी का, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में सबसे ज्यादा हो गया। वो आ तो पहले गए थे 1810 में ही आ गए थे भारत में, पर एज अ व्यापारी करके आए। जहांगीर के सामने उनका फोटो है कि हमको थोड़ी जगह दे दो, गुजरात के रास्ते से सारे आक्रमण, अभी तक जो भी आक्रमणकारी आए सारे गुजरात के रास्ते से।
शिवाजी महाराज के टाइम पे
उसके टाइम पे अभी चालू नहीं हुए थे आना, जस्ट एंट्री किया था, क्योंकि तो जहांगीर अकबर का मतलब उनका इतना शासन नहीं था, क्योंकि शिवाजी के टाइम पे तो औरंगजेब था, औरंगजेब को बहुत घृणा थी अंग्रेजों के साथ। वो जस्ट आके बसे थे, अपना अपना काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। शासन हुआ नहीं था, शासन हुआ प्लासी के युद्ध के बाद, 1757 का जो युद्ध है इसके साथ में, बंगाल के नवाब के साथ में और लॉर्ड क्लाइव के साथ में, सिराजुद्दौला को ये कर दिया ना उसने। सिराजुद्दौला की इतनी सारी सेना थी 20,000 और उनकी खाली 300, उसके बाद में उनकी जीत हो गई। क्यों? मीर जाफर वो गद्दार निकला, उनके साथ में जाके मिल गया, वो उसके साथ में जाके मिल गया,
शांति
लहरा दिया,
वहाँ ही खत्म हो गया। इसके लिए मीर जाफर को गद्दार ए वतन कहा जाता है। और उसके बाद में लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को भी मार दिया बाद में, उसको बताया था, क्योंकि उन्होंने देखा, लॉर्ड क्लाइव ने देखा कि उनकी खाली 300 की सेना है और ये सिराजुद्दौला ये एक ही आदमी था जो कि विरोध में उठा अंग्रेजों के। उसको समझ में आया अंग्रेजों की क्या नीति है, वो केवल यहाँ व्यापार करने नहीं आए, कुछ और करने आए हैं। ये पहला आदमी था भारत में कि जिसको ये समझ में आया कि ये कुछ और करने आए हैं। ये बहुत पहले की बात है, 1757। उसके बाद तो 100 साल के बाद जो क्रांति हुई 1857 मंगल पांडे और झांसी की रानी, वो अलग। ये तो बहुत सबसे पहले ये आदमी था जिसको समझ में आया कि ये अंग्रेज कुछ और है, तो उसने युद्ध किया उनके साथ। पर ये जो लॉर्ड क्लाइव के लोग थे, उन्होंने देखा अभी क्या करें, उन्होंने लेटर भेजा उधर इंग्लैंड में कि हमको सेना दो उनके लोगों को। उन्होंने बोला हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो नेपोलियन के साथ में लड़ने में बिजी थे, क्योंकि उनका आक्रमण, उन्होंने उधर वैसे ही फ्रांस को भी वैसे ही बंदी बना के रखा था जैसे भारत को बनाया था। तो बोले हम नहीं दे सकते, इसके लिए तुम कैसे भी कर दो। तो उन्होंने ढूंढा इस सेना में ऐसा कोई है जो लालची है, जो गद्दार हो सकता है, उसको बुलाया और कहा कि तुमको राजा बनना है, तुमको नवाब बनना है। उसने कहा बनना है, तो बोले जब भी हम आएंगे समर्पण कर दो बस, और मार दिया सबको वहाँ सबसे पहला।
उम्र मात्र 12 साल, अगर उसका 20 साल अगर होता तो कोई
कम उम्र थी उसकी,
12 साल ना, मैंने वो
बच्चा
बच्चा था उसका पिताजी, तो ये एकदम छोटा था। और उस टाइम उसका मैंने पल पल के 12 साल में उसको
राज्य दे दिया,
ये सिंहासन दे दिया। 12 साल उम्र में कितना वृद्धि होगा,
फिर भी वो बहुत तेज था, बहुत तेज था। तो वहां से सारा शासन चालू, उसके बाद में बक्सर का युद्ध, उसके बाद में दूसरा युद्ध करते करते, ये तो बहुत आगे की बात है, बहुत आगे। उसके बाद में सिख भी लड़े, वो टीपू सुल्तान लड़ा, टीपू सुल्तान को भी इससे मार दिया, इससे फ्रॉड से। उसका भी एक जो साथी था वो गद्दार हो गया, उसने दरवाजे बंद कर दिए। क्या नाम था उसका? ये हो गया साउथ। फिर इधर मराठा का अंत हुआ पानीपत के युद्ध 3rd में, उसके साथ में उसको भी खत्म कर दिया एंग्लो मराठा वार। एक एक करके फिर सिख थे उधर, सिख भी अंग्रेजों के विरुद्ध, उनको भी खत्म कर दिया। करते 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 सारा शासन अंग्रेजों के
लिए।
तो बाहर, हाँ, तो ये प्रश्न ये है कि क्या इन सभी के प्रति घृणा की भावना रखे कि जिन्होंने भारत में इतने आक्रमण किए। बाबा की वहां वाक्य है कि सर्व धर्म की सर्व आत्माओं का, विश्व की सर्व आत्माओं का भारत पर जन्म सिद्ध अधिकार है। सर्व यही आएंगे और जो भी लूट के लेके गए वो सारा वापस आएगा भारत में। वो लोग लूट के लेके गए तो
अभी लड़ाइयों के बीच में हमारा भी रोल रहा
होगा। हम ही थे इन सब के बीच में, कहाँ थे हम? हमारे साथ भी अत्याचार हुए और हमने भी अत्याचार किए है। आज बाबा ने क्या बोला, तुम्हारे खिलाफ तो केस कर देनी चाहिए, तुमने बाप की ग्लानी की है, तुमने सारी दुनिया का खाता चट कर दिया है, तुम निमित्त बने हो।
बाबा केस कहाँ दाखिल करेंगे?
तुमने ही किया है, तुम निमित्त बने हो दुनिया को पतंग पतंग बनाने का। भारत से ही पतंग की बीज निकला है, अमेरिका उधर से नहीं निकला है, भारत से निकला है। भारत जब पतित बनता है तो विश्व पतित बनता है, भारत जब वाइसलेस बनता है तो विश्व वाइसलेस बनता है। देवी देवताओं ने ही विकार की आरंभ किया सबसे पहले। काम शास्त्र भारत में लिखे गया, विदेश में नहीं लिखे गया। वात्स्यायन का लिखा हुआ काम शास्त्र भारत का है, विदेश का लिखा नहीं। मंदिर इधर बनाए हैं, विदेश के मंदिरों में ऐसे चित्र नहीं है जो भारत के मंदिरों में। तो भारत को पतित बनाने का सबसे नंबर 1 कार्य किसने किया? देवताओं ने। दूसरे धर्म की आत्माओं ने थोड़ी किया, वो तो पावन थी, अभी अभी आई थी उतर के। क्राइस्ट तो अभी अभी आया, क्राइस्ट के साथ में अभी अभी दूसरी आत्माएं आई।
जगन्नाथ मंदिर में बाबा जी बोलते गंगा चित्र था, जगन्नाथ मंदिर में नहीं, गंगा चित्र है
कोणार्क में, जगन्नाथ में पहले थे उसको निकाल दिया, ऐसे कुछ है शायद, ऐसा भी कोई कोई कहते हैं, बंद कर दिया। नहीं अभी नहीं, अभी वो अभी का मंदिर नहीं है, पुराना मंदिर है।
हाँ
तो ये खजुराहो, ये सारे जो है ये किसने बनाया, अभी प्रश्न ये है किसने बनाए, हमने ही बनाया। पतित बनाने का कार्य किसने किया है, हमने ही किया है। वो धर्म की आत्मा है तो अभी अभी आई थी बेचारी, वो थोड़ी ना ऐसे काम करेगी। अभी अभी इस्लाम आया, वो थोड़ी ना ऐसा काम करेगा। अभी अभी क्राइस्ट आया, अभी थोड़ी, अभी अभी बुद्ध आया, अभी अभी जैन आया, अभी अभी गुरु नानक आया।
सूली पर चढ़ाने वाले भी
हम ही है,
हम ही है, और कोई नहीं
हो सकते हैं।
इस्लाम की सोल कौन है,
इस्लाम की सोल कौन सी, इस्लाम माना,
इस्लाम जो मेन जो आपने पहला उसने हमला शुरू किया, खत्म करने का संकल्प आया,
इस्लाम का सबसे पहला आक्रमण जो भारत, इस्लाम की स्थापना छठवीं शताब्दी में हुई, मोहम्मद पैगंबर, वो तो चला गया। उसके बाद में इस्लाम फैला अरब में, पूरा अरब में फैला गया। सबसे पहला इस्लाम का आक्रमण वो हुआ सिंध में, पाकिस्तान, सिंध हैदराबाद, इस्लाम का सबसे पहला आक्रमण वहाँ है। पर वो लोग इतने शक्तिशाली थे, वो बप्पा राणा, वो सब, उस सब ने उनको बाहर निकाल दिया, नई एंट्री करने दिया। सबसे पहली एंट्री ही मोहम्मद गजनवी की है भारत में। उसके पहले कई लोगों ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की इस्लाम ने, क्योंकि कुरान में वो सब लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको जीने का ही हक नहीं है, ऐसे कुछ कुछ आयते हैं उसमें। तो उनको दुख है अभी भी कि हम अपना मकसद में पूरे कामयाब नहीं हुए, हिंदू धर्म खत्म ही नहीं हुआ, इस बात का खुदा उनको छोड़ेगा नहीं, ऐसा सोचते हैं। मतलब खुदा के दर पे क्या बोले कि जाएंगे वो, कि हम भारत में इस्लाम धर्म स्थापन नहीं कर पाए।
लिखे कौन चला गया,
कौन
कौन लिखा उसने कि भाई मुस्लिम स्थापन करना है,
वो तो कुरान, मतलब कुरान में यही लिखा है ना कि मूर्ति पूजा, और ये सब मूर्ति भंजक शासक है, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा करना ही नहीं है। जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं मतलब ये तो अल्लाह की जैसे ग्लानी है, जो बाबा ने भी आके कहा, मतलब इस्लाम धर्म उस समय स्थापन हुआ है ना पहले पहले, इसके लिए वो ज्ञान और हमारा ज्ञान बहुत मिलता है। हिंदू धर्म और हमारा ज्ञान दूर है, क्रिश्चियनिटी और हमारा ज्ञान ज्यादा मिलता है। क्रिश्चियनिटी एकेश्वरवाद है, देयर इज वन फादर, नन बट वन। इस्लाम एवल एक अल्लाह है बस, उसके अलावा और किसी के नीचे तो आगे झुकना नहीं है तुमको, किसी की भी मूर्ति पूजा नहीं करनी है। ये मूर्ति पूजा कहाँ से ला ली है, ये हनुमान और तुम्हारे चार हाथ और ये सारी कृष्ण की, आज भी बोला ना कृष्ण की 16,108 रानियां, ये सब कहाँ से ला ली, बाबा ने तो कहा लज्जा आनी चाहिए तुमको, ये बात, ये सारी बात है, ये तो ग्लानी। हमारा धर्म एकेश्वरवाद है ना, ब्रह्मा कुमारी एक ईश्वर। अभी हिंदू धर्म अनेकेश्वरवाद है, उसमें तो कई फिलोसफीज है, इतनी 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 षडशास्त्र अलग और दूसरे अलग अलग, जितने लोग आते गए, जितने लोग आते गए नई नई बातें करते गए। इसके लिए बाबा कहते एकज भूल क्या है, कृष्ण का नाम डाल दिया, इससे क्या हो गया, एकज भूल, ये एक ही भूल की वजह से भारत पतन हुआ है भारत का। क्यों, क्योंकि देखो एक गीता ही ऐसा शास्त्र है कि जिसमें सबसे ज्यादा टीका की गई है, बाकी किसी शास्त्र में इतनी टीका नहीं है, वेद पुराण उपनिषद पर इतनी टीका ही नहीं है। अभी गीता एक ही गीता है, उसके बारे में शंकराचार्य अद्वैतवाद लिख रहा है, टीका उसकी टीका में अद्वैतवाद कि आत्मा और परमात्मा एक। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत, आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में। माधवाचार्य आ रहा है वो द्वैतवाद, वो अलग ये अलग, माना एक ही गीता शास्त्र पर असंख्य लोगों ने असंख्य टीकाएं लिखी है। क्यों, अगर वो ये कृष्ण का नाम ही नहीं होता और शिव का नाम होता तो ऐसा प्रश्न ही नहीं आता। टैगोर गीता, महात्मा गांधी गीता, तिलक गीता, ज्ञानेश्वरी, उसके बाद में समर्थ श्रीधर स्वामी की गीता, उसके बाद में और एक गीता है, तुलसीदास का गीता नहीं, हाँ ये विनोबा भावे का गीता। मतलब सबने अपने अपने इतने लोगों ने और एक के विचार ना मिले दूसरे से। आप दो तीन टीका रखो तीन लोगों के अलग 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 अलग, क्यों, ये है एकज भूल। इसके वजह से भारत पतन बना, नहीं तो ये इस्लाम धर्म क्यों नहीं स्वीकार करता गीता को।
अरे तुम कैसे,
कृष्ण का नाम किसने डाला, ये भी एक बहुत विचार इस पेपर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि कृष्ण का नाम डाला कहाँ से जाए। कई जगह ऐसा लिखा है कि गीता जो है ये छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। उसके बाद में जब देखा किसी ने कि कृष्णवाद बहुत फैल रहा है तो कृष्णवाद को समर्थन देने के लिए उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया गया। फिर किसी ने देखा कि कहीं जगह विष्णु की भक्ति कम हो रही है तो वहां पर विष्णु का समर्थन करने के लिए विष्णु को कृष्ण का अवतार बनाया गया और उसके ऊपर उसका नाम डाल दिया गया। वो कहां डाला गया, कब डाला गया, इसकी कोई तिथि तारीख नहीं है, पर ये द्वापर के ही वहां शुरुआत के बीच में ये सब चीजें हुई है। जैसे पहले वैदिक काल है जिसमें उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, वहीं पर फिर, क्योंकि अगर गीता वहां सुनाई गई है युद्ध के मैदान में तो गीता के कुछ लोग उपनिषद से क्यों मिलते हैं, कुछ कुछ लोग उपनिषद के साथ मिलते हैं, ऐसा क्यों? अगर गीता केवल अर्जुन को सुनाई तो वो दिखा रहे कि व्यास ने सारा लिखा, बहुत विरोधाभास है। अभी कृष्ण का चरित्र ही एक संपूर्ण विवादास्पद चरित्र है कृष्ण, जो कि शास्त्रों में है। आज भी बाबा ने बोला ना, अगर तुम कहते हो गीता में पवित्रता की शिक्षा है, काम महाशत्रु है और कृष्ण को कितनी रानी है, उसके बच्चे भी बोला आज बाबा, कृष्ण का संपूर्ण चरित्र ही विवाद है। एक तरफ दिखाया है वो तो वस्त्र हरण कर रहा है, दूसरी तरफ वो वस्त्र दे रहा है, वस्त्र बचा रहा है किसी को, एक तरफ वो उंगली से गोवर्धन उठा रहे तो दूसरी तरफ भाग रहा है जरासंघ से, उसको रणछोड़दास नाम दिया गया। एक तरफ धर्म की शिक्षाएं दे रहा है तो दूसरे तरफ अर्जुन को कह रहा है कि मारो, वो देखो कर्ण नीचे है ना खड़ा, रथ के नीचे उसको मार दो, अधर्म है फिर भी मार दो उसको। एक तरफ ये, एक तरफ बोला मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा पर शस्त्र उठा दिया,
ऑलराउंड पलटा दिया,
रिहा दिलाया तब फिर छोड़ दिया।
राजनीतिज्ञ भी है, पॉलिटिशियन भी है ना। सारा महाभारत जो है वो दो लोगों का ही है, शकुनी और कृष्ण का युद्ध है बस, अगर देखा जाए तो। इतनी चाले, षड्यंत्र, क्या 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 है उसका। तो कृष्ण एक ऐसा चरित्र है कि उसमें बहुत विवाद है, क्या है वो समझ नहीं पाते लोग। ये भी बनाया किसने, लोगों ने ऐड करते गए उसके चरित्र के बारे में, क्योंकि द्वापर युग से जब चालू हुआ तो लोगों ने कृष्ण तो सुना ही होगा नाम, क्योंकि देवी देवता ही थे, उन्होंने फिर अपनी बुद्धि लगाना चालू कर दिया। और बहुत सारा जब ये अंग्रेज भारत में आए तब, नहीं अंग्रेज नहीं है, जब इस्लाम, तो नालंदा को जला दिया। अब नालंदा में कितनी सारी किताबें थी, छह महीने तक जलती रही नालंदा यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी मेन है हमारी, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला। तो नालंदा को जला दिया जहाँ पे बुद्ध और हिंदू के सारे टेक्स्ट थे, सारा छह महीने तक जलती रही। अब ये जलाने के बाद लोगों ने अपनी मेमोरी से वापस लिखा, अभी लिखने में फर्क तो पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये सब करते करते ये है एकज भूल, ये एक ही भूल, इसके लिए बाबा को सबसे खराब लगता है जब तुम सर्वव्यापी कहते हो, और कोई बात से ज्यादा खराब नहीं लगता उसको, एकदम इधर तुमने मेरी ग्लानी की, तुम्हारे खिलाफ तो केस कर देना चाहिए, तुमने मेरा अपकार किया, तुमने मुझे डिफेम किया है।
मैं फिर भी अपकार
अपकारी पर मैं पर आज ये भी बोला, ये भी ड्रामा, ऐसा हो तो मैं आऊ, आज के मूल्य में है ना, ऐसा हो तो मैं आऊ,
होता ड्रामा अनुसार,
होता ड्रामा अनुसार। चलो और क्या बोला है,
लज्जा के लिए दो बार
कहा, शर्म नहीं आती, बाप को भूलते हो लज्जा नहीं आती,
दूसरा पतित बने हो तो लज्जा नहीं आती,
लज्जा नहीं आती, याद नहीं करते लज्जा नहीं आती,
बाप और बच्चे के संग्राम में,
बच्चे बच्चे बच्चे। और शुरुआत मुरली की है बाबा ने, एक है बेहद का बाप बेहद के बच्चे को बेहद का वर्षा देते हैं, तो बेहद के बाप को जानना, केवल बेहद के बाप को तुम ही जानते हो और अपने आप को बेहद के बच्चे तुम ही मानते हो, तो ये जानना और मानना केवल तुम करते हो, दूसरा कोई नहीं करता है। खुद को जानना और खुद को मानना, जानना बेहद का बाप है, मानना बेहद के बच्चे है, ये जानना और मानना केवल तुम करते हो और कोई नहीं करता है।
वो तो न मानते हैं न जानते हैं,
ना समझते हैं, ना जानते ना मानते ना समझते। और क्या बोला, बेहद की समझा बेसमझी है तुम्हारी, ये भी बोला ना, ये तुम्हारी बेहद की बेसमझी है। और
जय जानेंगे भी वही जो शुरू से
जीवन की जो जिन्होंने भक्ति की, जाने न जाने वो जाने। तुम्हारा काम है संदेश दे दो। लास्ट सीजन की मुरली में एक वाक्य था ना, जाने न जाने वो जाने,
बॉक्स में डाल दो
बस। माने ना माने उनकी मर्जी, जाने ना जाने, माने ना माने उनकी मर्जी। और क्या बोला, तीर के बारे में भी बोला ना, तुम याद में रह के समझाओगे तो
तीर लगेगा,
याद में रहते नहीं तो तीर कहाँ से लगेगा।
तुम इतना याद में नहीं,
और
पढ़ाई के बारे में था, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम,
पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। और डायरेक्ट सुनना और भाइयों से सुनना, ये है चिंतन का विषय। एक है मुरली भाइयों से, मतलब आत्मा भाइयों से, उसमें पहने भी आ गई, और एक है डायरेक्ट बाप दादा से मुरली सुनना। बोलो क्या अंतर है दोनों में, एक है बाप दादा से डायरेक्ट सामने सुनना और एक है बहनों से भाइयों से इन सबसे सुनना। तो डायरेक्ट बाप से सुनने में क्या अंतर है, आज तो मुरली से नहीं डायरेक्ट वैसे बताओ, ऑब्वियस वो हो गया, वो बाबा बच्चे बच्चे करता है, तीर लगता है, असर होता है। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ ऑब्वियस, तो बाप दादा से अभी डायरेक्ट मुरली सुनना और यहाँ वहाँ सेंटर यहाँ वहाँ सुनना,
यहाँ
इसमें क्या अंतर
भाइयों से।
बाबा ने आज बोला कि तुम डायरेक्ट सुनते हो, वो लोग भाइयों से सुनते हो।
भाइयों से सुनते हैं तो मंडली रहती तो भाई सुना रहा है, बहन सुना रही है, बाबा से सुनते तो लगता है डायरेक्ट भगवान,
डायरेक्ट भगवान वाच। वैसे तो रोज ही भगवान वाच है, फिर भी ज्यादा लगता है,
ज्यादा लगता है।
वातावरण और स्थिति, वहाँ वातावरण
ऐसी हो जाती है,
वो वातावरण ही ऐसा, मतलब प्रिपरेशन होती है। यहाँ तो आए बैठे मुरली सुनी चल, वहाँ दो घंटे पहले से थोड़ी प्रिपरेशन, हॉल भरा हुआ है, डेट पहले से फिक्स है और वेट कर रहे हैं 15 दिन से,
और ऊपर से
जो बात रोज रोज होती है उसका थोड़ा आदर कम
है।
क्लास
भी होता है, कौन आ रहा है,
दो पांच बार तो चर्चा हो ही जाती, बाबा आ रहा है किसी को बताने में या फोन
तो वो इंतजार एक रहता है,
अंदर ही रहता है,
इंतजार रहता है, सुनने की इच्छा रहती है, ऐसा लगता है कुछ नया सुनेंगे। साकार में क्या लगता है भाई, आत्मा समझ के बात को याद करो, दुनिया विनाश होने वाली है, वही वही वही
अपने मन की बात भी बताता है,
ऐसा लगता है यहाँ कुछ नया कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो गया। तो ये एक है नया, फिर है वातावरण, फिर है हमारी खुद की स्थिति। और बोलो
एक बार बोल रहा था कुछ प्रकार नरसिंह राय
इतना बड़ा संगठन
पूरा पुलिस पर जाता है तो 100 किलोमीटर दूर दूर आना जाना कुछ ही नहीं, वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर
प्रिपेयर है, जैसे वो वीआईपी आता है तो मैं ऊपर से आता हूँ, मैं कोई ढिंडोरा नहीं पीटता, मैं आ रहा हूँ, मैं तो गुप्त तरीके से आता हूँ उस दिन,
वाइब्रेशन को
हाँ तो वो आता है, तो वाइब्रेशन स्थिति वायुमंडल तैयारी है,
याद भी सहज रहती है, बहुत
याद सहज रहती है,
उस दिन का माहौल ही अलग हो जाता है।
सारी आत्माएं हर अपने अपने
जितने भी दिखते हैं पता होता
है, तो ये भी संकल्प हमारे मन में रहता है कि इस समय सारे लोग बैठे और बाबा को
मिलते हैं, उस दिन जो है प्योरिटी और यूनिटी जबरदस्त होती है।
हाँ, और दूसरा वो सुनते समय योग भी चालू रहता है,
बिल्कुल
यहाँ जरूरी नहीं है, योग चालू है, यहाँ भटक रही है बुद्धि,
आत्मा
वहाँ आत्मा बाबा से पावर भी ले रहे हैं,
आज मुझे जितना ही भरना
भर लेना है, बस पहले से संकल्प करना है, आज बाबा के सामने कोई कमजोरी छोड़नी है, कोई तो वरदान लेना है, बाबा आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आगे बैठना, आगे कहीं बैठो, अव्यक्त बाप दादा से मिलने की विधि है अव्यक्त स्थिति, वो चाहे यहाँ बैठो वहाँ बैठो कहाँ बैठो कोंटे में बैठो कहीं बैठो, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी किरणें तो विश्व में फैल रही, सारी वसुंधरा में फैल रही है, उस समय वो यहाँ वहाँ 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 सामने वालों को ज्यादा देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
बाबा सीधा बोलते हैं मैं पहले पीछे वालों को
दिखाई देते हैं, इजी दिखाई देते हैं, यहाँ तो ऐसे करना,
वो कोई स्थूल व्यक्ति तो है नहीं, जैसे ये बैठे इनसे मैं मिलूं हेलो, वो कोई स्थूल है ही नहीं, वो अव्यक्त है, वो आत्मा परमात्मा का मिलन है, देह का नहीं है, इसके लिए वो यहाँ बैठो वहाँ बैठो वहाँ बैठो उसका कोई मतलब नहीं है, वो मन की स्थिति क्या है। कोई माता है जिसको दिखता भी नहीं बाबा, सबसे दूर बैठी है, उसको सबसे ज्यादा अनुभव हो रहा है, और जो सबसे सामने एकदम बैठे है बाबा के सामने, जो सोच रहे हमारा भी नाम दिख जाए थोड़ा टीवी में, हम भी थोड़ा ये सो रहे, उनको कहाँ की अनुभव है,
वो जो स्क्रीन होता है उससे 5 मिनट
थोड़ा आगे, तो ये अव्यक्तवादा से मिलने की विधि है अव्यक्त स्थिति, और बैठना कहाँ क्या इससे कोई संबंध नहीं है। स्थिति क्या है? व्यर्थ संकल्प, कोई बिल्कुल बस अरे ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों, ये खड़ा क्यों, वो क्यों, उसमें ही लगे हुए, तो वो अव्यक्त है, अदृश्य का खेल है ये खेल, कोई देखने वाला खेल नहीं है, ये अदृश्य है सब कुछ। अनुभूति भी उसी को हो रही है जिसकी स्थिति बहुत ऊंची है, जिसने सारा दिन की बात नहीं है, सारे साल की बात है, सारा जीवन की बात है। रोज अमृत वेला क्या है अनुभव, रोज ज्ञान का चिंतन कितना है, रोज श्रीमत पर कितने चढ़े, बाकी कुछ नहीं कर रहे, उसी दिन सबसे आगे जाके बैठ के, तो क्या अनुभव है क्या कुछ? बाबा के सामने जाके टोली ले लिया तो क्या, हजारों ने लिए आज तक, संपूर्ण बन गए क्या?
बाबा ने बोला भी अव्यक्त स्थिति वाले ही मिलन मुलाकात का अनुभव।
अरे वो अव्यक्त अदृश्य का खेल है ये सारा, ये तो दृश्य का कुछ है नहीं, जो दृष्टि गोचर है वो यहाँ कोई महत्व नहीं रखता है। तो ऐसी बात, तो एक तो ये, और क्या हो सकता है? तो हम वहाँ मिलते मिलते योग भी चालू है, और भी कोई पॉइंट है?
मतलब हाँ, कितनी भी होता है,
ये होता है कि उस समय बाबा आएंगे तो पहले से हम बैठ जाते हैं, यहाँ पे ये मतलब बोली खत्म हो जाएगी बाद में,
वहाँ पे पूरा बैठेंगे, टाइम पर बैठेंगे, कंप्लीट बैठेंगे, पहले से ही बैठे रहेंगे, जाने तक कोई बीच में खाना खाते आते आ जाते वो अलग बात है,
वो हमेशा
ही अपना बाप है, भगवान थोड़ी है,
वो
साइलेंस सेवा नहीं रहती। हाँ उस दिन मोबाइल थोड़ा शांत रहता है, दो तीन घंटा किसी किसी का चालू रहता है, वो अलग बात है,
अंतर्मुक्ता का भी उसमें
अंतर्मुक्ता रहती है,
साइलेंस रहता है,
साइलेंस रहती है, साइलेंस
साइलेंस
साइलेंस, अंतर्मुक्ता, अटेंशन, वातावरण, वायुमंडल,
सब जगह लगा लेते हैं सूचना, आज बंद रहेगा
ये, बंद रहेगा वो, बंद रहेगा, और बाबा भी आता है तो कुछ लेने के लक्ष्य से ही आता है ना, वो भी तो कुछ भरने आता है। अभी उसका टीचर का पार्ट तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अभी वो खाली मिलने आता है, जो कुछ सुनाता है थोड़ा बहुत वो तो बस सब सुना चुका है, ऐसा कुछ है ही नहीं बचा अभी, तुमने खाली कर दिया है बाप को, अभी उसका जाकर साइलेंस में जाने का टाइम है, सीरियल चिड़ियों ने सुखा दिया है बाप को, नहीं पढ़ा नहीं मैंने, अब एडमिट किया है वो पता है, पर एग्जैक्टली क्या है वो पूछा नहीं आज। अच्छा, और भी कोई पॉइंट है जो डायरेक्ट मिलने से मिलती है और इनडायरेक्ट नहीं मिलती है? अनुभव, वो पावर भरता है ना उस समय, ज्यादा अनुभव हो जाता है,
चार्जिंग कर देते
हैं
उसमें, बाबा की हस्ती को देखते हैं,
और उस दिन बहुत अटेंशन रहती है किसी से, हमारा कोई बिगड़े ना, संबंध ठीक रहे,
बड़ी बात है, बिगड़ भी गया ना किसी का, डिस्टर्ब भी हो गया, लेकिन अपने दिन मिलने के बाद ये हालत होती है कि वो जब भी मिलेगा हाथ जोड़ेगा,
सॉरी, अपनी कमी कमजोरियां एकदम
शीतल हो जाती
है,
शीतल हो जाती है, सबसे बड़ी
बात है, फिर भी हम उसके शरीर को देखते हैं, और वहाँ पे वो खुद,
और दूसरा जो सुनाने वाला होता है वो थोड़े अपने विचार उसमें डालता है, माना अगर आप 10 लोगों से मुरली सुनो तो 10 लोगों की मुरली आपको लगेगा अलग अलग है, जैसे वो शास्त्रों पर टिका टिप्पणी अलग अलग लोगों ने की है ना, वैसे भी मुरली 10 लोग सुनाए, 10 आत्माए, ये सारा सारा विधि विधान, सारी रीति रस्म यहाँ बो रही, बोना चालू हुआ है यहाँ से, क्योंकि कई आप अलग अलग सेंटरों पे जाओ, अलग अलग रीति से उसका इंटरप्रिटेशन करते, बाबा ने बोला कुछ और है पर इंटरप्रिटेशन कुछ और रीति से कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो वो उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है,
कुछ सुनाने वाला योगी उसको जैसे क्लास योगी उसको जाएगी,
अगर सुनाने वाला योगी ऐसे कई बहरे थे कुछ इधर उधर का कुछ नहीं सुनाते, बिल्कुल सीधा मुरली,
तो उसमें
कुछ नहीं इधर उधर खाली मुरली, तो वो भी उसका भी फर्क पड़ता है, सुनाने वाले की स्थिति पर भी बहुत कुछ आधार है ना,
सुनाने से पहले जो आधा घंटा योग करता है ना सुनाने वाला,
दूसरा सुनाने वाला योग भी, और उसका पहले से चिंतन करके, ऐसे नहीं कि वहाँ बैठ गया और हाथ में लेकर चालू, वो उस पे उसका भी फर्क पड़ेगा, पहले से थोड़ा चिंतन किया हुआ सुनाने वाले ने, पहले से थोड़ा चिंतन अध्ययन और योग, और सुनाते समय भी योग युक्त स्थिति, तो वो बाबा जो बोल रहा है वो सुना पाएंगे, नहीं तो अलग अलग मनस्थिति में एक ही व्यक्ति भी अगर अलग अलग स्थितियों में सुना है तो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा।
दादिया जो मुंबई सुनाते हैं किधर भी हो या कोई भी दादिया हम देखा जो कुछ क्लास पहले अच्छा उसका सुना दिया
बस बीच में कुछ भी नहीं बीच में कुछ भी नहीं यही सबसे
बड़ी
लिए अभी भगवान जब खुद आ रहा है तो डायरेक्ट ही सुना रहा है वो उसके इधर उधर की तो बात ही नहीं है ये भी तो असर पड़ रहा है यहाँ वहाँ का कुछ है ही नहीं उसमें कुछ भी नहीं है इधर उधर प्योर बिल्कुल जैसे एकदम डायरेक्ट तवा टू माउथ यहाँ बना और इधर सीधा जरूरी नहीं सीधा सीधा बस तवा से इधर बस बस ये इसमें रखा फ्रिज में रखा कहीं नहीं सीधा फ्रेश अभी अभी परमधाम से बाबा चिंतन करके आए और अभी अभी सुना रहे अच्छा अच्छा चिंतन करता होगा 15 दिन का गैप तो मिलता है उसको मिलता है कि नहीं नहीं करता अच्छा
चिंतन से बहुत फायदा उस दिन सूरज भाई ने बताया कि चिंतन करना बहुत जरूरी है
चिंतन ही जरूरी है स्थूल से चिंतन चालू करो जैसे एक शब्द जो आ गया ना जैसे मोहम्मद गजनवी का ये स्थूल चिंतन है इसका ढूंढना वो क्या है फिर सूक्ष्म में जाना क्योंकि एकदम जैसे आज का वरदान है इस पे चिंतन करने में तो ब्लॉक हो जाएगा डिफिकल्ट टाइप के वरदान ही है जैसे आज का क्या बोला बाबा ने जैसे लाइट है साइंस वाले उसका प्रयोग करते तो तुम कौन सी लाइट का प्रयोग करो आत्मिक परमात्मा
स्थिति की
और
ज्ञानियों की लाइट
स्थिति भी कौन सी स्थिति भी कौन सी
नहीं
कौन सी स्थिति
डबल लाइट
नहीं वो आगे है किसी बात मोदी एक स्थिति का नाम तीन लाइट जो है ना उसमें स्थिति कौन सी
स्वरूप स्वरूप डबल लाइट
नहीं नहीं पहला लाइट पहला फर्स्ट लाइन
ये स्थिति और स्वरूप लाइट है तो
देखो प्रैक्टिकल स्थिति
अच्छा
प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट ये तीन लाइट बाबा ने बोली साइंस वाले क्या करते हैं वो लाइट का प्रयोग करते हैं प्रकृति के की लाइट साइंस के अनेक प्रकार का प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो ये समझना थोड़ा टाइम लगता है इसको ये इतना आसान नहीं है मोहम्मद गजनवी को समझने जैसा ये इसमें जैसे लाइट उसका प्रयोग प्रकृति लाइट और प्रयोग साइंस तो इसी तरह हमारी जो लाइट है उसका प्रयोग हमको ज्ञान योग के लिए करना है आत्मा की लाइट परमात्मा की लाइट और स्थिति की लाइट तो बाबा ने क्या कहा शक्तियों का प्रयोग करो किसके द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो अर्थात
ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग
प्रयोग करो इसके द्वारा इस लाइट के द्वारा
स्थिति
जैसे साइंस उस लाइट के द्वारा प्रयोग करता है तुम इस लाइट के द्वारा प्रयोग करो
हमारी स्थिति ही एक लाइट है
स्थिति ही एक लाइट है उसका ज्ञान योग की शक्तियों के द्वारा प्रयोग करो
उस स्थिति
मतलब ये इस तरह के जो वरदान होते हैं ना ये अव्यक्त महावाक्य है इससे बिली हायर स्टडीज है ये कोई ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन है पीएचडी लेवल का स्टडी है यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज है जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार हो जाएगा प्रयोग करना है हमारा संपूर्ण जीवन जैसे प्रयोगशाला हो जाए ये योग का प्रयोग ज्ञान का प्रयोग हर जगह करते रहना एक संकल्प किया फिर देखो उसका क्या असर पड़ता है संकल्पों के प्रयोग योग का प्रयोग इस तरह से सारा जीवन एक जैसे प्रयोगशाला बन जाए सारा दिन भर ये करते रहना योग में सुबह भी अमृत वेला भी प्रयोग मुरली के समय भी प्रयोग भोजन करते समय भी प्रयोग अलग अलग हर एक्शन के साथ एक एक प्रयोग
अपने ऊपर ही प्रयोग पहले
अपने ऊपर ही दूसरों का तो बात ही नहीं है जैसे हम खाना खा रहे तो मैं एक प्रयोग जो है वो है मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूँ
जो मैं खा रहा हूँ सबको जा रहा है
अभी जो खा रहा हूँ वो जितनी भूखी आत्माएं हैं संसार में उनको भी जा रहा है जो पवित्र आत्मा है ब्राह्मण आत्मा है उनको उनकी पवित्रता भी बढ़ रही क्योंकि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूँ और खा रहा हूँ एक एक निवाला जो जा रहा है वो केवल मुझे नहीं जा रहा इस आत्मा से पूरे जड़ों से ऊपर तक जा रहा है ये है प्रयोग इस तरह के प्रयोग स्लोगन आज का
अंश
वंश किसका
विघ्न
समाप्त करना है ये है विघ्न विनाशक और भी कोई पॉइंट है अच्छे आज की मुरली में
बहुत होंगी जी
बोलो
ये मुरली है ना।
और भी कोई अच्छी पॉइंट? सर्वव्यापी की बात है, बार बार कहिए सर्वव्यापी के लिए क्या कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी क्यों नहीं है? वो कोर्स की बुक वाली पॉइंट छोड़ के दूसरी
क्यों नहीं है।
कोर्स की बुक में जो दिया है ना इसे, वो भक्त तो पुकार रहा है, एक बीमार है, वो एक स्त्री वो छोड़ के है तो क्यों नहीं, क्यों नहीं है? शास्त्रों ने तो उसे सर्वव्यापी कहा है, शास्त्रों ने उसको सर्वव्यापी, भक्तों ने कहा है उसको। अब ये भी प्रश्न है कि सर्वव्यापकता की बात आई कहाँ से? भक्तों ने तो उसको कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक है सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई मैं जाना, सब जगह है वो। और गीता में भी लिखा है कि ईश्वर सर्वभूत हृदयार्षण तिष्ठति अर्जुन, हर मना हमारे अंदर भी परमात्मा और आत्मा दो चीजें हैं। शास्त्र वातावरण में परमात्मा है और जो कुछ है वो सब परमात्मा है।
ऐसे श्लोक से बढ़िया बढ़ा गए हैं मुंह ये सारे श्लोक
और वो सबको ही प्रणाम कर रहा है। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जो गोपानी, आत्मा भी सर्वव्यापी है, ब्रह्म ही सर्वव्यापी है,
शरीर में आत्मा है।
मना संसार के जो इतना कंफ्यूजन है, ये सारा कंफ्यूजन मैक्सिमम जो बहुत सारे वादे, वैसे तो द्वैतवाद अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद चैत अचिंत भेद अभेदवाद, एक के बाद एक एक बात एक एक, जो जो नया नया व्यक्ति आते गया उसने अपना अपना ऐड कर दिया, शुद्ध शुद्ध अद्वैतवाद, तो वो उसमें वो झगड़े सारे इसी के तो हुए। भारत में विश्व में जो सबसे ज्यादा झगड़े हुए वो किसके वजह से? धर्म की वजह से सबसे ज्यादा रक्त बहा है। धर्म द्वापर युग से अब तक ऐसा कहा जाता है लगभग 15,000 युद्ध हुए हैं, 15,000 युद्ध मतलब बड़े बड़े युद्ध। कितने सारे हो गए बड़े, जिसका छोटे मोटे का तो छोड़ी दो, 15,000 द्वापर से अब
25,000 में 15,000
इतने सारे युद्ध हो गए, मतलब एक एक युद्ध में कितने कितने लोग मरे। तो ये इस तरह की बात है। तो सर्वव्यापकता की बात सारे शास्त्रों में, यहाँ तक कि परमात्मा सर्वव्यापी, आत्मा सर्वव्यापी और ब्रह्म, दोनों को ब्रह्म कहा, ब्रह्म सब जगह है, आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म सर्वव्यापी है, सर्व सर्विदम ब्रह्म, तो ब्रह्म सर्विदम, तो आत्मा भी सर्वव्यापी हो गई ना। आत्मा शरीर में भी सर्वव्यापी है, आत्मा संसार में भी सर्वव्यापी है और आत्मा ही परमात्मा। आज की मुरली में भी बोला ना, कोई एक सन्यासी आचार्य आया था बाबा के पास और कहने लगा मैं तुम आत्माओं को परमात्मा के समझकर तुमको नमस्ते करता हूँ। आज की मुरली में सर ये क्यों कैसे कह रहा है वो? क्या मूर्ख है? वो तो शास्त्र पढ़े ना, शास्त्र को अथॉरिटी समझते हैं, तो जो उसमें दिया है वो राइट है। और तुम आए बड़े दूसरा निकालने, नया ज्ञान जो कहाँ से आ गया? इसके लिए सबसे ज्यादा विरोध इस संस्था का किसने किया? आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज का फाउंडेशन ही वेद है, सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है स्वामी दयानंद सरस्वती की, उसमें सब कुछ। अभी तो ठीक हो गए, तभी की बात पहले की, सबसे ज्यादा जो विरोध था वो उन्हीं का था ना, सबसे ज्यादा विरोध क्या क्या कर दिया, तो कुछ किया था। हाँ वो है, वो तो है ही ना। अभी माँ बाप जो बच्चे संन्यास लेना चाहते हैं, वो संन्यास को प्रेरित करने वाले माँ बाप ही होते, क्योंकि वो रोकते हैं, जब रोकते हैं तो और बढ़ता है
मनोबल बढ़ता है।
कोई बोले मुझे संन्यास लेना है तो बोले जाओ ले लो, वापस आ जाएगा।
दादियाँ ये सब
सर्वव्यापी की बात पे वापस आ जाओ, 5 मिनट और। सर्वव्यापी क्यों नहीं है, हम क्या तर्क दे सकते
हैं?
अब भौतिक है, ओके,
जड़ और चैतन्य दो चीजें हैं,
बीज और झाड़, ऊर्जा और पदार्थ, पुरुष और प्रकृति,
जड़, तो जड़ में वो चैतन्य चीज कैसे?
हाँ, कल की मुरली में एक वाक्य था, आत्मा ब्रह्म में कभी लीन नहीं होती, आत्मा ब्रह्म में लीन नहीं होती, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, आत्मा आत्मा में लीन नहीं होती और आत्मा प्रकृति में भी लीन नहीं होती। 4 तथ्य है, क्योंकि आत्मा चेतन, चेतन जड़ में कैसे लीन हो सकती है?
चेतन
ऊर्जा है, ऊर्जा पदार्थ में कैसे लीन हो सकती है? नहीं हो सकती। प्रकृति पुरुष में कैसे लीन हो, पुरुष प्रकृति में कैसे लीन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके लिए आत्मा ब्रह्म में लीन नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म जड़ है,
आत्मा चेतन,
आत्मा चेतन, आत्मा परमात्मा में भी लीन नहीं होती, ये विभव बनेगा। और आत्मा आत्मा में भी लीन नहीं होती,
तो आत्मा भी चेतन है परमात्मा भी
पर चेतन होने के बाद में भी आत्मा का अपना अलग इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। इसके वजह से अगर वो लीन हो जाए उसका तो अस्तित्व ही खत्म
हो गया।
अगर वो बुदबुदा है, बुदबुदा अगर पानी में समा गया तो बुदबुदा कहाँ रहा, तो मतलब उसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व ही नहीं है, आत्मा का इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। इसके लिए वो चार चीजों में लीन नहीं होती कभी भी, इसके वजह से वो सर्वव्यापी भी नहीं हो सकती। तो परमात्मा जो है वो अति सूक्ष्म, इसका गायन सब जगह है। अभी जो चीज सूक्ष्म है वो अगर फैलाए, जो भी चीज फैल जाती है वो सूक्ष्म नहीं रहती है। तो एक तर्क ये भी है कि परमात्मा यदि सर्वव्यापी है और तुम एक तरफ कहते हो वेदों में ही लिखा है परमात्मा अति सूक्ष्म है, तो ये दो चीज तो विरोधाभास हो गई, कैसे हो सकती। और इवन वेदों में लिखा है परमात्मा की नतस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद में लिखा है उसकी कोई मूर्ति है ही नहीं, उसका कोई आइडल नहीं है, उसका कोई फोटोग्राफ नहीं है, वो निराकार है परमात्मा का, फिर भी हिंदुओं ने मूर्तियां बनाई।
वो ये भी कहते हैं ना कि सूक्ष्म चीज का विस्तार भी
विस्तार वो ना सूक्ष्म चीज का विस्तार, पर सूक्ष्म चीज जैसे विस्तार होती है उसकी सूक्ष्मता का शक्ति कम हो जाती है। जो सूक्ष्म है वही शक्तिशाली है, एटम सबसे शक्तिशाली, जैसे कोई चीज फैलती है शक्ति कम हो जाती है। इसके लिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, ये भी ये चिंतन का विषय है। इवन जगदीश भाई ने अपनी किताबों में छोड़ के रखा है कि इसके ऊपर चिंतन करो, मेरा चिंतन अधूरा है। वर्ल्ड इटर्नल ड्रामा वॉल्यूम 1, 2, 3 इसमें अभी बहुत सारी सर्वव्यापी की भी बात बोली है, उसमें सृष्टि चक्र की भी बात बोली है, सारी चीजें जो है ना वो अभी और उसमें चिंतन चाहिए। क्योंकि बाबा ये क्या थोड़ा सा बोल के छोड़ देता है ना,
अच्छे लगे रहे
वो तुम लगो अभी तुम करो आगे का चिंतन, वो खुद थोड़ी बताता है सर, थोड़ा सा बता देगा टच कर देता है छोड़ देता है तुरंत दूसरी पॉइंट, इसके पहले कि तुम चिंतन करो दूसरी पॉइंट रेडी। दूसरा और एक बात है, केवल एक शिव ही ऐसा देवता है वेदों शास्त्रों उपनिषदों में कि जिसकी दो रूपों में पूजा होती है। ऐसा विष्णु की नहीं होती, ना ब्रह्मा की होती, ना सरस्वती, ना किसी देवी की। शिव की दो रूपों में पूजा होती है, एक है साकार जो है शंकर और एक है निराकार जिसका प्रतीक है शिवलिंग। कल भी बोला ना, कल बाबा ने बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बड़ा भी बड़ा बड़ा रावण बनाते हैं। अभी रावण कोई वस्तु तो है नहीं जो छोटी बड़ी हो, तो एक तो शिव ही एकमात्र ऐसा है कि जिसकी दो रूपों में पूजा होती है, एक तो साकार और एक निराकार। उसका भी कनेक्शन हमारे ज्ञान के साथ है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो निराकार ही है। और निराकार की पूजा, शिवलिंग की पूजा शंकर की पूजा से ज्यादा फलदायी है ऐसा भी कहा गया है। इसके लिए बात है 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 शंकर के मूर्ति नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग लगाए।
शंकर के बहुत कम मंदिर होंगे,
शंकर के भी मंदिर तो है
नहीं।
जहाँ शिवलिंग है वहाँ शंकर तो है ही मोस्टली,
होता है लेकिन
शंकर भी ये भी एक काल्पनिक सा चरित्र है। शंकर तो कोई है ही नहीं, हम ही शंकर है, ब्रह्मा शंकर है, कोई है ही नहीं। शंकर नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, कोई अस्तित्व खाली ब्रह्मा है बस। विष्णु भी कोई है ही नहीं, व्यक्ति तो है ही नहीं, कोई विष्णु तो प्रतीक है दोनों का। इसके ऊपर चिंतन करना है सर्वव्यापी, क्योंकि बाबा बार बार भी मुरलियों में आता है। दो ही बातें, एक ये और दूसरा कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, वो तो अभी भी बाबा उससे संतुष्ट नहीं है, तुमने अभी तक सिद्ध ही नहीं किया बाबा कहते है ना, अभी भी कहाँ बोलते, अभी भी कहाँ सिद्ध किया है। दो ही मेन बातें यही है, इसके ऊपर ब्राह्मणों का सबसे कम ध्यान है। पर भारत का पतन जो हुआ है वो इसी आधार से हुआ है। और ये सर्वव्यापकता की बात वो क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन वालों ने नहीं बोली है, ना इस्लाम वालों ने बोली है, तुम ही हो हिंदू धर्म वाले जिन्होंने ये बात निकाली है। इसके लिए तुम निमित्त बने हो, केस तुम्हारे खिलाफ होनी चाहिए।
जिसने बिगाड़ा उसी से बाबा ठीक कराना चाहता है,
वो भी है पति तुम बने, पावन भी तुमको ही बनना है।
बिगाड़ा तो भाई हमने, ठीक बाबा चला गया, ठीक बाबा नहीं तो बाबा को बर्बाद
मिलेगा।
बाबा आखिर में तो बोल ही देता है ना, ड्रामा आखिर जो कुछ हुआ ड्रामा। अच्छा ओम शांति।
Thank you. है।